अच्छा, सवाल ये है कि कोई बच्ची है जो टीनेजर या औरत है, क्या उसके लिए बाइक चलाने की इजाज़त है? तन्हाई में है, जहाँ कोई नहीं देख रहा तो ठीक है, और जहाँ पर कोई देख रहा हो, किसी मर्द की नज़र पड़ती हो, वहाँ न चलाएं। कभी कभी चला लिया वैसे ही तो ठीक है, आम उसको आदत न बनाएं। दूसरी बात यह है कि मस्जिद कुबा और मस्जिद क़िबलतैन एक ही मस्जिद है? नहीं, दो अलग अलग मस्जिदें हैं। मस्जिद कुबा अलग है, मस्जिद क़िबलतैन अलग है, जहाँ पर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम नमाज़ पढ़ रहे थे। या फिर बात फरमाते हैं कि खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद थे और नमाज़ पढ़ रहे थे, नमाज़ पढ़ा रहे थे, उस दौरान तहवील क़िबला का हुक्म नाजिल हुआ। बहरहाल सहाबा थे, राजह कौल ये कि सहाबा वहाँ नमाज़ पढ़ रहे थे और क़िबला के बदलने का ऐलान हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिन्होंने नमाज़ पढ़ी थी उनको तो पता चल गया कि क़िबला का रुख बदल गया है। यहाँ आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि तो सहाबा यहाँ नमाज़ पढ़ रहे थे बैतुल मक़दिस की जानिब, इन्होंने कहा कि क़िबला बदल चुका है, तो नमाज़ के दौरान ये रुख बदल कर दूसरी तरफ हो गए। तो ये है मस्जिद जिसके एक ही नमाज में दो क़िबलों की जानिब नमाज़ पढ़ी गई, उस तारीख़ के लिहाज से इसको मस्जिद क़िबलतैन कहा जाता है। पहले उस मस्जिद में सामने की तरफ जो क़िबला है उस तरफ भी मेहराब बनी हुई थी, जैसे क़िबला हो, जैसे होता है और आम नमाज़ें वहाँ उसी तरफ होती हैं, और दूसरी तरफ भी, इसलिए कि बिल्कुल नॉर्थ और साउथ है, मस्जिद अक्सा जो है वहाँ से नॉर्थ की तरफ है और काबा जो है क़िबला वो साउथ की तरफ है, तो बिल्कुल मामला बिल्कुल दूसरी तरफ। तो पहले, अब से कुछ साल पहले ऐसा था कि उसमें पीछे की तरफ भी मेहराब बनी हुई थी, ये दिखाने के लिए कि देखो यही क़िबला इस तरफ था, फिर क़िबला इस तरफ हुआ। लेकिन उसमें होता यह था कि लोग वहाँ जाते थे, बेचारे बाहर के लोग हैं, वहाँ पहुँच गए तो इस तरफ भी नमाज़ पढ़ लेते थे, इस तरफ भी पढ़ लेते थे। उन्होंने फिर उसको मिटा दिया, अब वो पीछे जो पीछे की तरफ मेहराब थी उसको मिटा दिया। लेकिन ये मस्जिद क़िबलतैन अलग मस्जिद है, मस्जिद कुबा अलग है। सवाल यह है कि हज के वक्त सही हमने पहले की एहराम खोल दिए जिससे हम पर दम वाजिब हुआ, अच्छा अब ये तो तफसील में मैं नहीं जाऊंगा कि अच्छा कैसे दम लाजिम हुआ, क्या हुआ। जब मालूम कर लिया है कि दम लाजिम हुआ है, दम अदा करवाना है, तो अब मुझे नहीं पता कि ये लोग किस तरह अदा करते हैं, क्या है, मुझे इसकी तफसील मालूम नहीं है। हमारे तो कुछ जानने वाले वहाँ लोग हैं जो ये करवा देते हैं, और गुरबा में तकसीम करना है वो तकसीम भी करवा देते हैं, तो हमें तो उसमें सहूलत रहती है कि हम जिसको जानते हैं वो करते हैं। इसका मुझे पता नहीं कि ये किस तरह होता है। किसी को अगर दम अदा करवाना भी होता है तो हम करवा भी देते हैं दूसरों के लिए भी, कि उनकी रकम वहाँ भेज दी, वो लोग वहाँ से यानी जो भी उसका इंतज़ाम है वो कर लेते हैं और वो रबा में तकसीम कर देते हैं। अच्छा, सवाल ये है कि इंसान मुसाफिर कब बनता है? घर छोड़ते ही, नियत करने से, अच्छा मसला ये है कि इंसान जब अपने घर से निकल रहा है, नियत की सफ़र की, उससे कुछ भी नहीं हुआ, सफ़र की नियत करने से कुछ भी नहीं हुआ, सफ़र की नियत की उस वक्त घर में है पूरी नमाज़ पढ़ेगा, जब तक अपने वतन के अंदर है पूरी नमाज़ पढ़ेगा। अब सफ़र में जाने का इरादा है और शहर की हदूद से बाहर निकल गया, अब मुसाफिर बन गया, चाहे वो आधा किलोमीटर हो, चाहे 1 किलोमीटर हो, चाहे 10 किलोमीटर बाद हो, शहर की हदूद से बाहर निकला, आबादी से बाहर निकल गया और दूसरी आबादी या दूसरा शहर या आबादी ख़त्म हो गई, दूसरा शहर शुरू हो गया, अब इंसान मुसाफिर अब बनता है, सफ़र के अहकाम अब जारी होते हैं। اب انسان اب مثلاً ایئرپورٹ ہے، آبادی سے باہر ہے، ایئرپورٹ گیا تو مسافر بن گیا، لیکن اگر کوئی ایئرپورٹ اس شہر کا ہے، اسی شہر کے اندر ہے، آبادی کے درمیان میں ہے، تو ایئرپورٹ جانے سے مسافر نہیں بنے گا. آبادی کے اندر جب تک ہے، شہر کے اندر جب تک ہے، مسافر نہیں بنے گا. اب شہر کی آبادی سے نکلنے کے بعد مسافر بن جائے گا، اور جب تک دوبارہ اپنے وطن کے اندر داخل نہیں ہوتا، اور باہر جانے کے بعد انسان کسی ایک جگہ 15 دن میں نہیں ٹھہرتا، ادھر ادھر جاتا رہتا ہے، جب تک اپنے وطن کی حدود میں داخل نہیں ہوتا تب تک مسافر رہے گا. اچھا، اگر کسی کو قرآن عربی میں پڑھنا نہ آتا ہو، اپنی زبان میں رومن میں پڑھے، کیونکہ اب عمر بھی زیادہ ہے، سیکھنا مشکل ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ قرآن کریم کا یہ ہے کہ وہ عربی میں ہے اور عربی ہی میں پڑھا جاتا ہے، اور کسی اور زبان میں اگر اس کو پڑھیں گے تو صحیح نہیں پڑھا جائے گا، اس لیے کہ ہر زبان میں یہ تمام حروف ہوتے نہیں، اور اس کے بغیر معنی صحیح بیٹھیں گے نہیں. عربی زبان میں قلب کو قلب پڑھ لیا تو قلب تو دل کو کہتے ہیں، قلب کتے کو کہتے ہیں، تو جہاں یہ حروف میں فرق نہیں ہوگا تو وہاں پر ظاہر ہے کہ وہ کسی سے پڑھنے سے ہی آتا ہے. غلط پڑھنے کے بجائے انسان پورا قرآن نہ پڑھے، کچھ صورتیں جو پڑھ سکتا ہے، اب عمر زیادہ ہے، بعض صحابہ بھی آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور عمر زیادہ ہو گئی تو آپ نے بعض صورتیں سکھا دیں کہ اچھا یہ پڑھ لیا کرو، یہ پڑھ لیا کرو. تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان پورا قرآن، مکمل قرآن پڑھے. ہاں، قرآن میں کچھ صورتیں ہوں، کچھ پارے ہوں، ایک دو پارے جو اچھی طرح کسی سے پڑھنا سیکھ لے، وہ انسان پڑھتا رہے اور اسی کو بار بار دہراتا رہے، تب بھی ٹھیک ہے. لیکن بہرحال عربی قرآن کو عربی ہی میں پڑھنا ہے، اور اس کو کسی سے سیکھ کر جو پڑھا ہو وہی زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ انسان اپنے طور سے پڑھنے کی کوشش کرے اور اس میں غلطیاں کرے. اچھا، کسی شخص کی، اچھا، عشاء کے فرض اور وتر دونوں قضا ہوئے ہیں، کوئی شخص فرض عشاء کے 4 فرض قضا کرتا ہے ظہر کے ساتھ، اور وتر قضا کرتا ہے عصر کے ٹائم پہ، عصر پڑھنے سے پہلے، ادا کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یعنی سوال یہ کہ ایک ساتھ پڑھنا ضروری ہے یا الگ الگ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، عشاء کے فرض کو الگ قضا کر لیں، وتر کو بعد میں قضا کر لیں، آگے پیچھے کر لیں، ضروری نہیں ہے کہ ایک ساتھ کیا جائے.